नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दिल्ली विस्फोट के घायलों से मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत प्रदूषण रोधी कड़े प्रतिबंध लागू किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पश्चिमी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गए और सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री भूटान की 2 दिन की यात्रा संपन्न होने के बाद हवाई अड्डे से सीधे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के डॉक्टरों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को घायलों के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि साजिश में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। श्री शाह ने सोमवार को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच गृह मंत्रालय ने घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यूएपीए विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। उसने कहा कि अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से संचालित हैं। लाल किला भी कल तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कारणों से दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने से यात्रियों की जांच में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड DIAL ने यात्रियों को परामर्श जारी करके कहा है कि वे इसे देखते हुए यात्रा पर निकलने की योजना बनाएं और अंतिम समय में किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। DIAL ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि सभी टीमें सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित हो। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
दिल्ली NCR और पुलवामा में कई जगहों पर की गई छापेमारी में सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। सूत्रों ने बताया है कि 9 और 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी के दौरान एजेंसियों ने लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने की अन्य सामग्री जब्त की। सूत्रों के अनुसार बढ़ते दबाव के कारण ही संदिग्ध ने दिल्ली बम कांड में ये कदम उठाया। ये विस्फोट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए की गई छापेमारी के कारण फैली घबराहट में हुआ। सूत्रों ने बताया है कि बम समय से पहले ही फट गया और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका असर सीमित रहा। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रक्षेपास्त्र मिले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनके सुझाव और शिकायतें साझा की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि जनसंवाद ही सुशासन की आत्मा है और इसी संवाद से हमारे सुशासन का संकल्प और मजबूत होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी शिकायतों का समाधान तय सीमा में किया जाए। वहीं दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज उत्तम नगर के कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री सूद ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे जनता की परेशानियों का शीघ्र समाधान किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत प्रदूषण रोधी कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ये निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में 9 सूत्रीय कार्य योजना लागू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में चेस्ट क्लिनिक स्थापित करने का आह्वान किया गया है।
इस क्लिनिक को वायु प्रदूषण के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे खोलने की सलाह दी गई है। परामर्श में लोगों को सड़कों और भारी यातायात और उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों तथा निर्माण और विध्वंस स्थलों जैसे वायु प्रदूषण वाले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। लोगों को सुबह और देर शाम बाहर टहलने, दौड़ने, जॉगिंग करने और शारीरिक व्यायाम करने से भी बचने को कहा गया है। लोगों को बायोमास जलाने से बचने और खाना पकाने तथा गर्म करने के लिए गैस या बिजली जैसे धुआं रहित ईंधन का उपयोग करने को कहा गया है। पटाखे जलाने, सिगरेट पीने और मच्छर भगाने वाले कॉयल और अगरबत्ती जलाने से भी बचने की सलाह दी गई है। लोगों को नियमित रूप से पानी से आंख साफ करने और गर्म पानी के गरारे करने को भी कहा गया है। N95 या N99 मास्क का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा के फतेहाबाद के उपायुक्त को धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू न करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार पूर्व के निर्देशों और कई समीक्षा बैठकों के बावजूद 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच फतेहाबाद में पराली जलाने के 59 मामले सामने आए हैं। नवम्बर की शुरूआत में इन मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए आयोग ने उपायुक्त से 17 नवम्बर तक स्पष्टीकरण मांगा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस बीच राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 419 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सुरक्षा गार्डों को इलेक्ट्रिक हीटर का वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री सिरसा ने कहा कि सर्दी के मौसम में खुले में आग जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये हीटर वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार शहर की 2000 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जैव द्रव्यमान को जलाने की रोकथाम के लिए ये हीटर प्रदान करेगी। श्री सिरसा ने कहा कि ये कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद पुलिस ने आज लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जब्त कर ली है, जिसके मुख्य संदिग्ध से जुड़े होने का संदेह है। ये कार खंडावली गांव के पास खड़ी मिली थी। दिल्ली विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अलर्ट जारी किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार का विवरण उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी साझा किया है। पुलिस ने बताया कि राजधानी में सभी पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज पश्चिमी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से लगभग 3 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्कूटी और एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन और दूरदर्शन के महानिदेशक के सतीश नम्बूदरी पाद ने आकाशवाणी भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाया जाता है। आइए सुनते हैं महात्मा गांधी के संबोधन का ये अंश।
मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं, तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहूं कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है।
इस अवसर पर कई कलाकारों ने भी बापू स्टूडियो में महात्मा गांधी के प्रिय भक्ति गीतों के माध्यम से राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाइड्रोजन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रदर्शित करने के लिए 4,85,00,00,000 रुपए के कुल निवेश से देश भर में 4 हाइड्रोजन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली में आज हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सूक्ष्म ऊर्जा अब केवल पर्यावरणीय विकल्प का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए एक आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक अनिवार्यता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि मालवीय जी का भारतीय शिक्षा को आधुनिकता, नैतिकता और राष्ट्र धर्म से जोड़ने का संकल्प अद्वितीय था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार से 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो रहा है। इस वर्ष मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय संवर्धन व्यापार संगठन के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया कि इस वर्ष लगभग 3,500 प्रदर्शकों के मेले में भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज में आयोजित शपथ समारोह और नए विद्यार्थियों के स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शपथ लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सपनों को साकार करने का वायदा है। राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य महोत्सव 2025 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस महोत्सव के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी लेखक, विद्वान, शोधकर्ता और यूनेस्को के छात्र शामिल हुए। नई दिल्ली में दृष्टि बाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मेजबान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 292 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इससे पहले भारत ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दिल्ली विस्फोट के घायलों से मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पश्चिमी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।